जय राधा माधव कुंज बिहारे। जय राधा माधव कुंज बिहारे। गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारे। गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारे। लाभ गिरिवर धा जसोदानंदन ब्रज जन रंजन। जसोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुन पियावन चारे। जय राधा माधव कुंज बिहारे। जय राधा माधव कुंज बिहारे। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। जसोदानंदन ब्रज जन रंजन। जसोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुन पियावन चारि। जमुन जमुना पियावन चारि। जमुना जय राधा माधव कुंज बिहारे। जय राधा माधव कुंज बिहारे। जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय विष्णुपाद परमहंस सुप्रभात कचर सुत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंज राधा कुंज गिरि गोवर्धन की ब्रज भूमि श्री वृंदावन धाम की नवदीप मंडल श्री धाम मायापुर की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जगन्नाथ वल्लभ सुभद्रा जी की श्री राधा गिरधारी जी की श्री निताई गौर सुंदर की युगधर्म हरिनाम संकीर्तन की भक्ति प्रदायिनी तुलस महारानी की ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की भगवद्वाणी श्रीमद भगवद गीता की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि
आप कीजिए आप लोगों कीजिए
ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायस्य भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे आज हम लोग श्रीमद् भागवतम स्कंध 9 अध्याय 4 श्लोक संख्या 40 श्लोक दोनों तो है साथ में दोनों एक हो गया है साथ में दो है ना श्लोक ये कहीं लेना है पहले आवृत्ति कर लेते हैं ब्रह्मणा अतिक्रमे दोषो द्वादश्याम यत्पारणे यत्कृत्वा साधुमे भूया अधर्मो वा न माम अस्पृशेत अम्भसा केवले नाथ करिष्ये व्रतपारणम् आहुरभ्य भक्षणम् विप्रा रसितम् नासितम् च आवृत्ति केवल एक ही श्लोक करेंगे जो बोर्ड में है अम्भसा केवले नाथ करिष्ये व्रतपारणम् आहुर भक्षणम् विप्रा यसितम् नासितम् च तत् अम्भसा केवले नाथ करिष्ये व्रतपारणम् आहुर भक्षणम् विप्रा यसितम् नासितम् च तत् अम्भसा केवले नाथ करिष्ये व्रतपारणम् आहुर भक्षण विप्रा ह्यसितं नासितं च तत्। हम भजा केवले नाथ करिषे व्रत पारणम आहुर भक्षणम विप्रा नासितं च तत्। देखिए लाल जी जी ठीक है, लाल जी कब आए, कब आए, समदार्थ ब्राह्मण अतिक्रमे, ब्राह्मणों के प्रति सत्कार के नियमों का उल्लंघन करने में दोषा दोष है। द्वादश्याम द्वादशी के दिन या क्योंकि अपारणे समय से व्रत न तोड़ने पर यत्कृत्वा जिसे करने पर साधु जो शुभ है मैं मेरे लिए भूयात ऐसा होए अधर्मा जो धर्म से रहित है वा अथवा न नहीं माम मुझको अस्पृशेत स्पर्श करें अम्भसा जल से केवलेना केवल अथ अतेव करिष्ये मैं करूंगा व्रतपारणम व्रत की पूर्ति आहु कहा अभक्षणम पीने का पानी दिप्रा हे ब्राह्मणों ही निसंदेह असितम खाना न असितम तथा न खाना तत् ऐसा कार्य। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। राजा ने कहा ब्राह्मणों के प्रति सत्कार के नियमों का उल्लंघन करना महान अपराध है। दूसरी ओर यदि कोई द्वादशी के तिथि में अपने व्रत को नहीं तोड़ता तो व्रत के पालन में दोष आता है। अतः हे ब्राह्मणों, यदि आप लोग यह सोचें कि यह शुभ है तथा अधर्म नहीं है तो मैं जल पीकर व्रत तोड़ूं। इस प्रकार ब्राह्मणों से परामर्श करने के बाद राजा इस निर्णय पर पहुंचा कि ब्राह्मणों के मतानुसार जल का पीना भोजन करना है और नहीं भी है। अब लोग दोहराइए। राजा ने कहा ब्राह्मणों के प्रति सत्कार के नियमों का उल्लंघन करना महान अपराध है। दूसरी ओर यदि कोई द्वादशी के तिथि में अपने व्रत को नहीं तोड़ता। जय जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा जी की, श्रीराधा गिरधारी जी की। दूसरी ओर यदि कोई द्वादशी के तिथि में अपने व्रत को नहीं तोड़ता तो व्रत के पालन में दोष आता है। अतः हे ब्राह्मणों, यदि आप लोग यह सोचें कि यह शुभ है तथा धर्म नहीं है तो मैं जल पीकर व्रत तोड़ दूं। इस प्रकार ब्राह्मणों से परामर्श करने के बाद राजा इस निर्णय पर पहुंचे कि ब्राह्मणों के मतानुसार जल का पीना भोजन करना है और नहीं भी है। तात्पर्य, जब महाराज अम्बरीश ने दुविधा में पढ़कर ब्राह्मणों से इस विषय में परामर्श किया कि अपना व्रत तोड़ें या दुर्वासा मुनि की प्रतीक्षा करें तो ब्राह्मणगण इसके विषय में कोई निश्चित उत्तर नहीं दे पाए। लेकिन वैष्णव सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति होता है, अतः महाराज अम्बरीश ने ब्राह्मणों के समक्ष स्वयं निर्णय लिया कि ये थोड़ा सा जल पी लें, क्योंकि इसे व्रत तोड़ने की पुष्टि भी हो जाएगी और ब्राह्मण सत्कार के नियमों का उल्लंघन भी नहीं होगा। वेदों में कहा गया है अपश्नाति तत् नैवासितम नैवांसितम। इसका अर्थ है कि जल पीने को भोजन करना माना जा सकता है और नहीं भी माना जा सकता। कभी कभी अपने व्यवहारिक अनुभव में हम यह देखते हैं कि कोई राजनीतिक नेता सत्याग्रह करते समय खाता नहीं लेकिन जल पीता है। जल पीने को खाना न मानते हुए महाराज अम्बरीश ने ऐसा करने का निर्णय लिया। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रेरूपम सागर जातम सह गण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साधयितम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तत्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वंशाकल्पतरुभयश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
राजा ने कहा, ब्राह्मणों के प्रति सत्कार के नियमों का उल्लंघन करना महान अपराध है। दूसरी ओर यदि कोई द्वादशी के तिथि में अपने व्रत को नहीं तोड़ता तो व्रत के पालन में दोष आता है। अतः हे ब्राह्मणों, यदि आप लोग यह सोचें कि यह शुभ है तथा अधर्म नहीं है तो मैं जल पीकर व्रत तोड़ दूं। इस प्रकार ब्राह्मणों से परामर्श करने के बाद राजा इस निर्णय पर पहुंचे कि ब्राह्मणों के मतानुसार जल का पीना भोजन करना है और नहीं भी है। इस अध्याय में आप सुनते आ रहे हैं कि महाराज अम्बरीश किस तरह से एकादशी व्रत किए और एकादशी व्रत के बाद में द्वादशी के दिन जैसे ही पारण करने का समय आ गया था उसके कुछ समय पहले उनके यहाँ अतिथि के रूप में दुर्वासा मुनि पधारते हैं। दुर्वासा मुनि बहुत तपो और अनेक योगियों से अनेक सिद्धियों से जो समन्वित हैं, बहुत तेजस्वी ब्राह्मण हैं, जो हर प्रकार के वर देने में साप देने में समर्थ हैं। तो ऐसे ब्राह्मणों के आगमन पर गृहस्थ का गृहोचित कार्य बनता है उसको हर तरह से स्वागत करना, उसको संतुष्ट करना। जो अपने घर में आए हुए अतिथियों का स्वागत नहीं करता है तो वह गृहस्थ जीवित ही मरे हुए के समान माना जाता है। अतिथि का अर्थ होता है जो बिना सूचना दिए आ जाता है, अतिथि जो अचानक आ जाता है, कोई टेलीफोन या कोई मैसेज बिना दिए कोई अचानक आ जाता है दैव योग से तो उसको अतिथि कहते हैं। जो जिसके बारे में सूचित है उसको अभ्यागत कहते हैं। जिसके विषय में हमें जानकारी है कि ये व्यक्ति अमुक व्यक्ति इस समय आने वाला है तो उसके लिए सब तैयारी की जाती है। लेकिन अतिथि तो अचानक कोई आ जाता है बिना सूचित किए उसको अतिथि कहते हैं। तो अतिथियों का जो स्वागत नहीं करता है वो उसको बड़ा ही उपहास होता है और वैदिक नियम के अनुसार उसका बहुत ह्रास होता है, उसका धन यश उसकी प्रतिष्ठा क्षीण होने लगती है। इसलिए यथा स्थिति शास्त्र में वैदिक शास्त्रों का आदेश है कि अतिथि की सेवा करनी चाहिए। जैसे महाराज हरिश्चंद्र के यहाँ अतिथि रूप में विश्वामित्र जी स्वप्न में आए थे और स्वप्न में अपने अतिथि का स्वागत करने के लिए उन्होंने जो संकल्प लिया था उसको पालन करने के लिए वो सब कुछ न्यौछावर कर दिए। जो अतिथि की सेवा नहीं करता है, शास्त्र में कहा गया अपने से बड़े वृद्ध ब्राह्मण श्रेष्ठ जन या कोई भी अभ्यागत आ जाता है तो उसका सेवा करने से चार चीज की वृद्धि होती है। चाणक पंडित के अनुसार सेवा तो दूर है, प्रणाम करने से ही चार चीज की वृद्धि होती है।
सेवा करने से तो सर्व सुलभ हो जाता है, सेवा से भगवान को भी वो बस में कर लेता है। चाणक पंडित कहते हैं कि अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धो पसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अपने से ज्ञान वृद्ध, आयु वृद्ध या कुल में जो श्रेष्ठ हैं, ऐसे ब्राह्मण या अन्य भी की सेवा करने से, उसकी शुश्रूषा करने से, उसको प्रणाम करने से चार चीज बढ़ती, आयु विद्या जस और बल, चार चीज बढ़ता है, आयु विद्या जसो बलम। इस संसार में सभी लोग दीर्घायु होना चाहते हैं, लंबी आयु प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और जिज्ञासा करते हैं हमारी कितनी आयु है। जिसके बाद लंबी आयु होती है तो लंबी लंबी योजनाएं बनाता है, जैसे नेता लोग पंचवर्षीय योजना बनाते हैं कि 5 वर्ष में हमको ये चीज कर लेना है। उनको यह पता नहीं होता है कि हमारी स्वयं की क्या योजना है, हमारी गाड़ी कब तक आगे बढ़ेगी क्या भरोसा है कि हमारी सांस कब रुक जाएगी। किसी दिन भी हम जा सकते हैं, लेकिन व्यक्ति योजना बनाता है तो यही सोचता है कि मुझे अभी मरना नहीं है। तो योजना के अंतर्गत आयु पर वो विश्वास प्राप्त करता है कि नहीं, हमें अभी बहुत दिन जीना है। इसलिए आयुष्मान होने के लिए लोग दान करते हैं, ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेते हैं, वृद्ध लोगों की सेवा करते हैं। और जो भक्ति में बहुत उन्नत ब्राह्मण हैं, जैसे दुर्वासा मुनि, वैसे ब्राह्मणों की सेवा लोग करते हैं। ब्राह्मण अगर जो बोलते हैं वो हो जाता है, जो ब्रह्मविद ब्राह्मण होते हैं जो बोलते हैं वो हो जाता है। ऐसे ब्राह्मणों के विषय में बहुत सारी कथाएं हैं, जैसे जरासंध भी ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेता था, विजयश्री का आशीर्वाद लेता था, आयुर्विद्या जसो बलम। तो ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेता था, ब्राह्मणों की खूब सेवा करता था। ब्राह्मणों को पृथ्वी का देवता कहते हैं, भूदेव। ब्राह्मण पृथ्वी के प्रकट देवता हैं और ब्राह्मण भगवान के बहुत प्रिय हैं। गो ब्राह्मण हिताय च, भगवान ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। स्वयं भगवान श्री राम भी ब्राह्मणों की सेवा करते थे, माता पिता गुरु और ब्राह्मणों की सेवा करते थे। भगवान गीता में भी उद्घोष किए हैं कि जो माता पिता और ब्राह्मणों की भक्तों की सेवा करता है तो शारीरिक तपस्या है, और शारीरिक तपस्या करने से व्यक्ति तेजस्वी होता है और पृथ्वी का ऐश्वर्य प्राप्त करता है। देव दुज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम, देव दुज गुरु प्राज्ञ, देव मन भगवान, समस्त देवताओं के भी आराध्य हैं भगवान श्री कृष्ण, उनकी पूजा करने से, द्विज मने ब्राह्मण भक्तों की सेवा करने से, प्राज्ञ मने आपके जो पूर्वज हैं माता पिता, प्राज्ञ से जितने भी हमसे बड़े हैं माता पिता से लेकर के, देव द्विज गुरु और गुरु की सेवा करने से भी मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। महासेवा द्वार माहुर विमुक्ते, उसके मुक्ति का मार्ग जो है प्रशस्त हो जाता है। गुरु की सेवा करने से वो भगवान का बहुत प्रेमी भक्त हो जाता है। इसलिए शास्त्र में भगवान कहते हैं कि देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, इनकी पूजा करनी चाहिए। तो वैदिक नियमों के अनुसार राजा अम्बरीश अपने अतिथि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ दुर्वासा मुनि की सेवा करने के लिए तत्पर हुए। तो कुछ समय के बाद द्वादशी का समय आ गया था, और द्वादशी के समय में
जो व्रत तोड़ने का जो समय होता है उसका बहुत महत्व होता है। वो समय में व्रत को तोड़ने से एकादशी व्रत का फल मिलता है, इसीलिए लोग पारण का समय का इंतजार करते हैं कि वो समय में हमको एकादशी का व्रत तोड़ना है। तो दुर्वासा मुनि जल जमुना में स्नान करने के लिए गए थे और स्नान करने के बाद वो समय पर जब नहीं आए तो अम्बरीश महाराज ब्राह्मणों से मंत्रणा करने लगे। जो बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण थे ज्ञान में साधना में, तो ऐसे ब्राह्मणों से मंत्रणा कर रहे थे कि क्या उपाय है, हमारे घर में अतिथि आए उनको बिना खिलाए बिना स्वागत किए अगर कुछ खाया जाए तो भी धर्म सम्मत नहीं है। तो कोई निष्कर्ष पर ब्राह्मण लोग नहीं आ रहे थे क्या करना चाहिए। और एकादशी का जो व्रत तोड़ने का समय भी बहुत करीब आ चुका था, बहुत करीब आ चुका था, कोई कंक्लूजन नहीं मिल रहा था, कोई निष्कर्ष नहीं मिल रहा था। तो अम्बरीश महाराज स्वयं निष्कर्ष निकाल जाए, अम्बरीश महाराज भी बहुत शास्त्रविद थे, बहुत शास्त्र जानते थे। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो भक्त होता है, जो वैष्णव होता है, वो बहुत ज्ञानी होता है। भक्त के हृदय में अपने आप ज्ञान स्फुरित होता है, भक्ति से ज्ञान उसके हृदय में स्फुरित हो जाता है और वो सही निर्णय ले लेता है। जैसे राजा रघु के राज्य में एक बार कौश नाम के ब्रह्मचारी आते हैं। राजा रघु बहुत तेजस्वी राजा थे, बहुत धर्म परायण थे और बहुत दानी थे। उनके दान के विषय में सभी लोग जानते थे। उनके राज्य में एक बहुत बड़े महर्षि वर्तंतु जो अरण्य बसेरा करते थे और जंगलों में गुरु कुल चलाते थे और बिना किसी मूल्य के बच्चों को ज्ञान दान देते थे। जैसे आजकल विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है तो उसके बदले में बहुत टैक्स लिया जाता है, एजुकेशन का जो फीस है वो बहुत लिया जाता है। नहीं, पहले के वैदिक काल में जो भी भक्त होते थे, खास करके उच्च कोटि भक्त जैसे वशिष्ठ, विश्वामित्र, महर्षि धौम्य, महर्षि संदीपनी, ऐसे बड़े बड़े उद्भव विद्वान होते थे जो मुफ्त में विद्यालय चलाते थे और उनके विद्यालयों से बड़े बड़े विद्वान निकलते थे, उनके समान ही योग्य विद्यार्थी निकलते थे। तो वर्तंतु मुनि महाराज रघु के राज्य में बहुत बड़े विद्वान भक्त और उस समय के सबसे बड़े प्रख्यात शास्त्र के जानकार थे। शास्त्र के ऊपर उनकी मीमांसा पूरे विश्व में फैली हुई थी। उनके विद्यालय में अनेक विद्यार्थी रहकर विद्याध्ययन करते थे, अनेक विधाओं पर ज्ञान देते थे। स्वयं जंगल में रहते थे, जमीन पर शयन करते थे, बलकल धारण करते थे और कंदमूल स्वीकार करते थे और विद्यार्थियों से कुछ लेते नहीं थे, निस्वार्थ सेवा करते थे। सेवा करना बड़ा कठिन है, वो भी निस्वार्थ सेवा करना और कठिन है। पैसा लेकर विद्यालय चलाना आसान है, लेकिन बिना कुछ लिए हॉस्पिटल चलाना ये भी बड़ा कठिन है। जैसा हॉस्पिटल चलाते हैं या विद्यालय चलाते हैं या कोई प्याऊशाला चलाता है या कोई भोजनालय चलाता है या कोई लोगों को फ्री में वस्त्र मुहैया कराता है, कोई लोगों को फ्री में आवास उपलब्ध कराता है, कोई औषधि लोगों को उपलब्ध कराता है, तो ये सब काम बहुत कठिन है। इतना कठिन है कि पैसा लेकर के भी उसको देना बड़ा कठिन है। जैसे हॉस्पिटल है, या विद्यालय है, पैसा लेने के बाद भी घाटा लग जाता है। तो पहले के जो लोग होते थे निस्वार्थ सेवा करते थे, उनके बाद जो कुछ भी आता था सब सेवा में लगा देते थे। तो बर्तनतुम के आश्रम में एक बहुत मेधावी छात्र रहता था, कौश, जैसे महर्षि धम्म का विद्यार्थी अरुणी था। तो कौश जो है आश्रम में रह करके 14 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था, और साधारण तरीके से नहीं, जैसे लोग डिलीट करते हैं, पीएचडी करते हैं, वैसे उस शास्त्र में, उस विषय में बिल्कुल पारंगत हो गया था। अब विद्या अध्ययन करने के बाद अपने गुरु बर्तनतु मुनि के पास जाता है और गुरु से निवेदन करता है कि हे गुरुदेव, आपने मुझे 14 भाषाओं का और अन्य विषयों पर मुझे अपने ज्ञान दिया है, इसके बदले में मैं आपको कुछ दक्षिणा देना चाहता हूँ। शास्त्र की ऐसी मान्यता है कि गुरु को दक्षिणा देने पर ही विद्या की सिद्धि होती है। तो गुरु को जरूर गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, गुरु को सेवा से प्रसन्न करके विद्या प्राप्त करनी चाहिए, तब वो विद्या जो है काम में आती है। जैसे परशुराम से कर्ण जो है शस्त्र और शास्त्र की विद्या प्राप्त किए थे, लेकिन गुरु से कपट करके वो ज्ञान अर्जन किए थे। जब वो कपट परशुराम को जब मालूम हुआ कि ये ब्राह्मण नहीं, ये क्षत्रिय है, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, ये सारी विद्याएं तुम्हें काम में नहीं आएगी। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कि गुरु को शुश्रूषा और सेवा के द्वारा और दैन्यता और नम्रता से जो शिष्य गुरु को प्रसन्न करके विद्या प्राप्त करता है, तो वही विद्यार्थी कहलाता है। विद्यार्थी का मतलब जो सुसंस्कृत है, जो उसका अंदर बाहर, उसके व्यवहार में, उसके क्रियाकलाप में भी वो विद्या झलकती है, वो विद्यार्थी है। विद्यार्थी के बहुत सारे लक्षण दिए गए हैं, लेकिन कलयुग के विद्यार्थी का लक्षण भी दिया गया है कि चपंत भोजन चपंत पानी, चपंत भोजन चपंत पानी, अखंड निद्रा तथैव च, गृहवासी विद्या उदासी, कलो विद्यार्थी लक्षण। कलयुग के विद्यार्थी, विद्यार्थी पहले के विद्यार्थी बहुत कम खाते थे और घर से दूर रहते थे, आज के विद्यार्थी जो है खूब खाते हैं और खूब पानी भी पी लेते हैं और सोते हैं तो सोए रह जाते हैं, मंगल आरती गुरु पूजा सब कुछ हो जाता है, फिर भी उनको जगाना पड़ता है तब जगते हैं। विद्यार्थी को कैसे सोना चाहिए, जैसे कुत्ता सोता है, कुत्ता सोते हुए भी जागता है, अपने कार्य में इतना जागरूक रहता है कि सो करके भी जगता है और थोड़ा सा भी आवाज आता है तो जग जाता है। बहुत जागरूक रहना चाहिए, अगर सो जाएंगे तो करोड़ों अरबों की चोरी हो जाएगी। तो विद्यार्थी का चोरी क्या है, उसकी साधना में अगर कमी आ जाती है तो सबसे बड़ी कमी है। तो विद्यार्थी को और ब्रह्मचारी को हमेशा सावधान रहना चाहिए, अगर थोड़ा भी हम मिस करते हैं तो बहुत घाटा हो जाता है, उसकी पूर्ति करना असंभव है। तो कौश जो है आश्रम में रखकर बहुत सावधानी पूर्वक गुरु के आदेश का पालन करता था और गुरु के मनोभाव को जान करके ही सब कुछ सेवा करता था, तो गुरु हमेशा प्रसन्न रहते थे। गुरु आश्रम में रहते हुए कृषि कार्य में, गोरक्षा में, वाणिज्य में, पैसा लाने में, आश्रम की भलाई करने में, अच्छा बिगड़ा की सेवा करने में, हर तरह से सेवा करता था। और गुरु को का पर्सनल भी सेवा करता था, उनका वस्त्र धोना, उनके लिए कंदमूल लाना, उनका चरण दाबना। जैसे भगवान श्री राम जब जनकपुर जा रहे थे तो रास्ते में विश्वामित्र की बहुत सेवा करते थे, जब भी रास्ता में थकान होता था तो विश्वामित्र का दोनों भाई चरण दबाते थे। मनिवर सैन किन्ह जब जब जाई लगे चरण चापन दो भाई। राम और लक्ष्मण जब विश्वामित्र चलते चलते थक जाते थे, वृद्धावस्था में भी वो चलते थे तो थक जाते थे, तो रात्रि में श्री राम और लक्ष्मण के चरण को दबाते थे। तो भगवान होकर के भी आदर्श स्थापित करते हैं कि गुरु की सेवा करने से, अतिथि की सेवा करने से, ब्राह्मण की सेवा करने से व्यक्ति जो है बहुत महान हो जाता है। सेवा से ही लोग महान होते हैं, बिना सेवा कोई महान नहीं होता है। स्लोगन भी लिखा जाता है कि परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस संसार में भी अगर कोई धनी बनना चाहता है तो परिश्रम करना पड़ता है। इस संसार में भी कोई बहुत ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत उसको परिश्रम करना पड़ता है। अगर आपको बहुत अच्छा भक्त भी बनना है तो सेवा करना है। जो जितना अधिक सेवा करता है उतना ही अधिक महान होता है। प्रभुपाद जी इतना सेवा किए थे इसलिए वो अपने गुरु के आदेश को फलीभूत कर दिए और पूरे विश्व में कृष्ण भावना का प्रचार कर दिए सेवा के द्वारा ही। सेवा से भगवान भी उसके वश में हो जाते हैं। तो कष्ट जो है अपने गुरु को कहता है कि मैं आपकी सेवा मैं आपको 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा देना नहीं, मैं आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। जैसे अम्बरीश महाराज अपने यहाँ आए हुए दुर्वासा मुनि की सेवा करना चाहते हैं, उनको कैसे मैं प्रसन्न करूँ, ऐसा कुछ भी न करूँ जिसे वो असंतुष्ट हो जाए। जो अतिथि को संतुष्ट कर लेता है तो उसके घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। अतिथि की सेवा से अगर अतिथि को संतुष्ट कर लेता है तो लक्ष्मी उसके घर से आ जाती है। हम लोग लक्ष्मी के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लक्ष्मी कैसे आती है? अतिथि सेवा से, साधु सेवा से और भगवान की सेवा से लक्ष्मी जी आ जाती है। और लक्ष्मी जी जब आती है तो उसका अगर कोई सदुपयोग करता है तो और लक्ष्मी जी आती हैं। प्रभुपाद जी लेकिन लक्ष्मी से, नारायण की सेवा करने से लक्ष्मी जी वहीं रह जाती हैं। लक्ष्मी जी कहीं नहीं जाती हैं। जब कोई नारायण की सेवा करता है तो लक्ष्मी जी वहीं बैठ जाती हैं, उसके घर में ही हमेशा के लिए अपना घर बना लेती हैं। वो लक्ष्मी का घर हो जाता है। और जब सेवा नहीं करता है, धन का दुरुपयोग करता है तो लक्ष्मी जी तुरंत भाग जाती हैं। वाणी से भी अगर कोई भगवान की सेवा करता है तो उसकी वाणी पर सरस्वती जी विराजमान हो जाती हैं। वाणी गुणानुकथन है, वाणी से भगवान का गुणानुवर्णन करता है। जीवा का सबसे बड़ा काम क्या है? हमारे जीवन में जीवा वही तब सार्थक होती है जब भगवान के विषय में हम गाते हैं, तो जीवा पर सरस्वती जी बहुत प्रसन्न होती हैं। और जीवा का अगर कोई दुरुपयोग करता है, शराब पीने में, गाली गलौज करने में, निंदा करने में, जीवा से बहुत हम कुछ धमाल मचाते हैं। जीवा का इतना काम है कि गोली और तलवार से भी नहीं होता है। दादागुंज महाराज कहते हैं कि जिह्वा, यही जिह्वा से आदमी पान भी खाता है और पनही भी खाता है। इसी जिह्वा से आदमी एक घंटे में हजारों हजार रुपया ले लेता है। जैसे वकील कोर्ट में जिह्वा से बहस करता है, लेक्चरर जो है कॉलेज में भाषण देता है तो उसको पैसा मिलता है। जिह्वा का बहुत है। महाराज बोलते हैं जिह्वा से रेफ्रिजरेटर भी चलता है और हीटर भी चलता है। जिह्वा से आप किसी पर कुछ वाक प्रहार कर दिए तो उसके अंदर पूरा उत्तेजना आ जाती है, शरीर हीट हो जाता है। और अच्छा बोलिए तो उसके अंदर शीतलता आ जाती है।
जीवा का बहुत महत्व है हमारे जीवन में, इसलिए कोई घर में आता है तो आदमी बहुत वाणी से स्वागत करता है पहले, फिर आसन देता है, फिर उसको जल देता है, फिर उसको भोजन देता है। पहला स्वागत है वाणी से, बचने न किम दरिद्रता, वाणी में क्या दरिद्रता है। अतिथि कोई आता है तो लोग उसका स्तुति करते हैं। बहुत सारे लोग, एक बार हम महाराज के साथ केनिया में गए थे तो कई घरों में हम लोग जाते थे, एक एक दिन कई लोग आमंत्रित करते थे, चार पांच घरों में, तो हर जगह हम लोग खा नहीं पाते थे। तो जब हम लोग जाने से पहले ही लोग आरती और अभिषेक करने के लिए, चरण अभिषेक करने के लिए, बहुत चीज, जैसे भगवान का अभिषेक होता है, हम केनिया में पहली बार देखे थे। बहुत स्वागत करते हैं वो लोग, और स्तुति, कोई कोई वेद स्तुति, यानी भक्तों के लिए जो भी स्तुति। और मॉरिशस में भी मैं देखा, मॉरिशस में यहाँ से ज्यादा वैदिक रीति रिवाज है। मॉरिशस में भी घरों में जाने पर लोग इसी तरह, मतलब बहुत अच्छा ढंग से करते थे, ऐसा मिलते थे, ऐसा स्वागत करते थे, जो दिल को जीत लेते थे। तो ये वास्तव में हमारे वैदिक संस्कृति में, कोई घर में शत्रु भी आता है तो उसको लोग मित्र बना लेते हैं। एक बार राघवेंद्र महाराज बता रहे थे कि शत्रु भी अगर आपके यहाँ आ जाए गलती से, कभी कभी पता गलत होने से आदमी अब शत्रु के घर में भी पहुंच जाता है, तो जाने के बाद फिर हो जाता है कि मैं कहाँ आ गया, तो उसके मन में बहुत भय होता है कि मैं तो गलत जगह में आ गया। लेकिन ऐसा उसके साथ व्यवहार करे कि वो मित्र बन जाए। महाराज बोलते हैं शत्रु भी अगर घर में आ जाए तो उसकी ऐसी सेवा करिए कि वो शत्रुता भूल जाए और वो मित्र बन जाए। तो वैदिक संस्कृति में अतिथि के रूप में अगर कोई भी आ जाए, जैसे कौस्त जब निवेदन कर रहे थे बर्तंतु मुनि से, तो बर्तंतु मुनि कहे कि देखो बस तुम्हारी सेवा ही गुरु दक्षिणा है, तुम क्या दे सकते हो, तुम्हारे पास कौपिन कमंडलू के अलावा और क्या है, तुम आश्रम में रह करके सेवा किया है, कृषि में सहायता किया है, गोरक्षा में सहायता किया है, तुम्हारी सेवा से ही मैं प्रसन्न हूँ। कष्ट के बार बार कहने से बर्तन तुम नहीं कहते क्या दे सकते हो, बार बार कहने से जैसे अच्छे रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन ते हो, चंदन को भी बार बार घिसा जाए घर्षण से भी अग्नि निकल जाती है, हीरा को बार बार घिसने से उसमें चमक आ जाती है, बांस को, सूखे बांस को घिसने से अग्नि उत्पन्न हो जाती है। ऐसे सम व्यक्ति को भी के ऊपर कोई बात का बार बार दबाव देने से उसमें भी उत्तेजना आ जाती है, बाल में भी बार बार कंघी लगाने से भी चिंगारी आ जाती है, आती है कि नहीं, बाल में जब आप रात्रि में ऐसे कंघी लगाते हैं तो उसे छोटी छोटी चिंगारियां निकलती हैं। हथेली को भी बार बार प्रेषित करने से भी गर्मी आ जाती है। तो कौश से जब बार बार कह रहा था तो बर्तंतु मुनि को आवेश आ गया कि अगर देना ही है तुम्हें, तुम देना ही चाहते हो तो 14 भाषाओं के बदले में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दे दो, ऐसा मांग किए बर्तंतु मुनि को दे ही नहीं सकता है। कौश जो है गुरु को प्रणाम करता है और कहता है कि मैं जरूर 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा ही दूंगा आपको। और उस समय के प्रख्यात राजा रघु के पास जाता है, जो बहुत दानी थे, रघु के पास जाता है। कष्ट देखता है कि राजा के पास कुछ नहीं है और सारे धन को विश्वजीत यज्ञ में आहुति दे दिए थे, ब्राह्मणों को दान दे दिए थे। जैसे अम्बरीश महाराज, पीछे का श्लोक में वर्णन है कि ब्राह्मणों को 60 करोड़ है ना, 60 करोड़ गौ दान किए, बताइए। पीछे के श्लोक में वर्णन है
60 करोड़ गौवें दी।
महाराज अम्बरीश ने अपने घर में आए सारे अतिथियों को, विशेषकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। उन्होंने दान में 60 करोड़ गौवें दी, जिनके सिंह सोने के पत्थर से और खुर चांदी के पत्थर से मढ़े हुए थे। इतना बड़ा दान, 60 करोड़। अब भारत में हमको लगता है 60 करोड़ गाय नहीं होंगी। इस समय भारतवर्ष में कि पूरे विश्व में भी 60 करोड़ गाय नहीं होंगी उम्मीद है। भारत में गायों का इतना कत्ल हो रहा है कि गायों की संख्या बहुत कम हो गई है। भैंसों की संख्या हो सकता है थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन गायों की संख्या बहुत कम होगी। भारतवर्ष मतलब पहले भारतवर्ष, पूरे विश्व को भारतवर्ष कहा जाता था। 60 करोड़ गायें दान देना आज कहा जाए तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। किस पद्धति से दान देते थे, किस कैसे, और इतना संभालने वाले दान लेकर संभालते भी कैसे थे, ये भी ब्राह्मण लोग दान लेते थे और दान दे भी देते थे। ऐसा नहीं कि गाय लेकर घूमते थे सब। जो दान लेता था वो भी दान दे देता था, संग्रह अति संग्रह न कर्तव्य, अति संग्रह कोई नहीं करता था। इधर आया तो उधर दे दिया, इसलिए किसी के पास जो था न उसका था, न जिसके पास था वो उसका, सब अपना था, नहीं तो कुछ अपना नहीं था, कोई अपने पास कोई रखता ही नहीं था। सबके पास प्रचुर मात्रा में हर चीज होता था, इसलिए कुछ गायें ऐसी भी गायें थी जिसका कोई भी उपयोग कर सकता था। ऐसे जमीन थे जिस पर कोई भी रह सकता था, खेती कर सकता था। ऐसे बड़े बड़े उपवन थे, फलों के वृक्ष, जिसका कोई भी सेवन कर सकता। सबके पास प्रचुर मात्रा में हर चीज था, इसलिए देने में कोई कंजूसी नहीं करता था। सब देने के बाद भी फिर उतना ही हो जाता था, कौन लेता था और कौन उतना संभाल सकता था। इसलिए देने वाले को देने पर भी फिर उतना का उतना ही रहता था, देने के बाद लोग फिर वापस दे देते थे। जैसे राजा को जो भी वस्तुएं मिलती थी कर में, तो उसको फिर दान देता, फिर वो कर में दे देते थे लोग। एक तरफ से दान करते, दूसरे तरफ से फिर राजा के पास दे देते थे लोग। प्रजा भी जो कुछ भी प्रजा के पास था राजा को दे देते थे लोग, और राजा के पास जो कुछ भी होता था प्रजा को दे देते थे। इसलिए कहा जाता है कि जैसे नदी अपने जल को नहीं पीता है, पिबंती नद्यः स्वमेव नाभ, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, नादन्ति सस्यं खल्वारिवाः, परोपकाराय सताम विभूतयः। पहले के जैसे राजा होते थे वैसी प्रजा भी होती थी, कोई संचय नहीं करता था। ये धन की कहीं कमी थी ही नहीं, कहीं कालाबाजारी नहीं थी, ब्लैक मनी कोई नहीं रखता था। तो कौश जो है राजा के पास, रघु के पास जाते हैं, राजा रघु जो है पूछते हैं कि कौश आपके आगमन का क्या कारण है, आप किस प्रयोजन से आए हैं। उनको आप स्वागत करते हैं, अतिथि को आए देख करके राजा खड़े हो जाते हैं, स्वागत करते हैं और अपने आसन पर विराजमान कर उनका पास संवाहन करते हैं, अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर पुष्पों से, सुगंधियों से, अनेक सुगंधी तेल से उनके पैर का मसाज करते हैं और उनको खाने के लिए अनेक सुस्वादिष्ट पदार्थ देते हैं और खुद फैन पंखा झलते हैं और बहुत सुंदर सुंदर कोमल कोमल वस्त्रों का आसन बनाकर उस पर उनको बैठाते हैं। फिर कहते हैं कि हे कौशल, आपके आगमन का किस प्रयोजन से आए हैं, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ। क्या मुनि बरतंतु के लिए कोई भजन में कोई तपश्चर्या में कोई विघ्न तो नहीं उपस्थित हुआ है, कि आश्रम में कोई दैवी प्रकोप तो नहीं आ गया है, आश्रम में कोई वस्तु की कमी तो नहीं है, सरोवरों में जल की कमी तो नहीं है, गायों के लिए चरागाह में घास की कमी तो नहीं है, क्या कमी है, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ। तो कष्ट देखता है कि राजा के पास इस समय मिट्टी के पात्र हैं, मिट्टी के सकोरे हैं और बैठने के लिए कुश के चटाई है, इस समय राजा के पास धन नहीं है, इसे मांगना उचित नहीं है, कष्ट मांगना नहीं चाहता है। जैसे शरदकालीन बादलों से जल की याचना आप नहीं कर सकते हैं, शरदकाल के मेघ जल नहीं देते हैं, जो बरसात के बादल होते हैं वो जल देते हैं। जैसे चातक पक्षी जो है शरदकालीन मेघों से जल की अपेक्षा नहीं रखता है, शरदकाल में कभी कभी वर्षा होती है, लेकिन बरसात में रोज वर्षा होती है, बरसात में रोज वर्षा होती है। राजा बसंत वर्षा ऋतुओं की रानी, रानी कौन है, वर्षा रानी है और राजा बसंत है, लेकिन दोनों की भिन्न कहानी। राजा के मुख में हंसी और अनेक फूल खिले रहते हैं, कंठ में माला, रानी का अंतर विकल दृगों में पानी, और वर्षा रानी जो उसका हृदय हमेशा विरह में दर्द होते रहता है और आंखों से पानी गिरता है, इसलिए वर्षा रानी रोज पानी देती है। राजा बसंत वर्षा ऋतुओं की रानी, लेकिन दोनों की कैसी भिन्न कहानी। राजा के मुख में हंसी कंठ में माला, रानी का अंतर विकल दृगों में पानी। तो राजा की स्थिति देख करके कष्ट बहुत अंदर से दुखी हो रहे थे, इस समय राजा से मांगना मुनासिब नहीं है। चातक पक्षी भी वर्षा में जल की अपेक्षा रखता है, शरदकालीन मेघों से जल की अपेक्षा नहीं रखता है। राजा के पास इस समय कुछ नहीं, मिट्टी के सकोरे हैं, मिट्टी के पात्र हैं, जहाँ सोने के पात्र होते थे। राजा ने सब कुछ ब्राह्मणों को दान दे दिया था, अपने खाने का पात्र भी, सब कुछ, अपने बैठने का सोने का सिंहासन भी दान दे दिया था। राजा लोग पहले सब कुछ दान में दे देते थे, अगर अतिथि आ गया तो अपने आप को भी दान में दे देते थे। जैसे दधीची अतिथि सेवा में अपने आप को ही दे दिए, अपने शरीर को ही दान कर दिए। शिवी महाराज पक्षी उनके अतिथि के रूप में आया था, कहा मैं आपका शरणागत हूँ, और शरणागत की जो रक्षा नहीं करता है वो बहुत पापी माना जाता है। तो शिवी महाराज ने उस अतिथि की सेवा में अपने आप को ही दे दिया। तो राजा कहते हैं कि आप हमारे अतिथि हैं, अतिथि की अगर हम सेवा नहीं करेंगे, आप जो कहिए मैं आपकी कैसे भी सेवा कर सकता हूँ, मैं प्राण की बाजी लगाकर भी आपकी सेवा कर सकता, कहिए। अंत में कष्ट कहता है कि मैं गुरु के गुरु दक्षिणा के लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा लेने के लिए आया था, लेकिन मैं आपको इस समय देखता हूँ आपके पास कुछ धन है नहीं, तो मैं क्या मांगूं। तो राजा रघु कहते हैं कि मैं अवश्य 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा आपको दूंगा। पहले सोने का रुपया चलता था, सोने का चांदी का, अब जो है कागज का चलता है। पहले धन का मतलब सोना चांदी हीरा जवाहरात इसको माना जाता था, गाय जिसके पास गाय होती थी, हाथी घोड़े होते थे, उसको धनी मानते थे, इतना गाय रखा, इतना हाथी है, इतना घोड़े हैं, गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, ये सब धन होते थे। कागज का कोई मूल्य नहीं है, कागज जल गया तो क्या मिलेगा, राख मिलेगा। सोना हीरा जल भी जाता है तो उसका कीमत होता है, हाथी मर भी जाता है तो उसका कीमत होता है, हाथी का दांत भी करोड़ों रुपया में बिकता है। लोग पहले कहावत कहते थे कि हाथी मारा भी तो 9 लाख का, पहले बहुत कम कीमत था, लेकिन अब तो करोड़ों में कीमत होता है। कल मैं पढ़ा था पेपर में कि चार लोग हाथी दांत के तस्कर पकड़े गए थे, तो उनके पास से 4 करोड़ का हाथी का दांत पकड़ा गया। हाथी का दांत बहुत मूल्यवान होता है, उसका हड्डी भी बहुत मूल्यवान होता है। तो पहले हाथी घोड़े गाय ये सब रखते थे, गोधन गजधन। जैसे नंद महाराज पर 9 लाख गाय थी, 9 लाख गाय, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। गोधन गजधन बाजी धना और रतन धन खान। इसके बावजूद भी जब आवे संतोष धन तब धन धूल समान, उसको भी लोग धूल के समान समझते थे, आसक्त नहीं होते थे। नहीं, आजकल धन किसको लोग मानते हैं? कागज का रुपया को धन मानते हैं। आजकल लोग जो जितना कागज का बंडल रखा है उसको लोग बोलते हैं बहुत धनी है। बैंक में है लेकिन प्रत्यक्ष कुछ भी नहीं दिखाई देता है, खाने के लिए भी वो खरीद कर लाता है लेकिन नोट रखा है बैंक में, तो लोग बोलते हैं इसके पास इतना करोड़ों रुपया का इसके पास बैंक बैलेंस है। अब लोग बोलते हैं कि जिसके घर में घूस नहीं आता है वो धनी नहीं है, तो बोलते हैं आपको कितना ऊपरी क्या आमदनी है। जैसे कोई बोलते हैं हमारे पास हर महीने 20,000 का वेतन मिलता है, 20,000 का तनख्वाह मिलता है, तो लोग बोलते हैं कुछ ऊपरी आमदनी है, मतलब घूस मिलता है कि नहीं। इधर जब आवे धन घर घूस धना सब धन धूल समान। जिसके घर में घूस आता है मतलब 2 नंबर का पैसा आता है तो सबसे बड़ा धन है। ब्लैक मनी 2 नंबर का हेरा फेरी का पैसा आता है तो लोग बोलते हैं हाँ ये बहुत चतुर है, बहुत विद्वान है, बहुत अच्छा व्यवसायी है। अगर आजकल धनी बनना है तो गलत ढंग से ही लोग धनी बनते हैं। ईमानदारी से कोई धनी नहीं बन सकता है। ईमानदारी से अगर कोई रहे तो बस परिवार चला सकता है, लेकिन ज्यादा कुछ बना नहीं सकता है। पहले सब कुछ होते हुए भी लोग संतोषी होते थे, संतोषम परम सुखम, संतुष्टो ये न के नवा। सब कुछ होते हुए भी विरक्त जैसा लोग रहते थे और नहीं रहने पर भी वो धनवान जैसा महसूस करते थे। कुछ भी नहीं है फिर भी वो अपने आप को सब संपन्न मानते थे। आज सब कुछ है फिर भी लोग असंतुष्ट हैं। पैसा है सब कुछ लेकिन संतोष नहीं है लोगों को, और अधिक अधिक के लिए लोगों को खेद है कि मैं और अधिक बना लूं। तो राजा के पास कुछ नहीं था, राजा रघु के पास, फिर भी वो तत्पर हो गए और कहे कि जरूर मैं 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा प्रबंध करूंगा। और उन्होंने कुबेर पर चढ़ाई किया। कुबेर पर चढ़ाई करने से पहले ही कुबेर जो है उनके भित्री भक्त वत्सलता को देख करके, आतिथ्य सेवा की भावना को देख करके कुबेर उनके खजाना को भर दिया। अतिथि सेवा का इतना बड़ा लाभ है कि आदमी संकल्प करता है पूरा हो जाता है। कुबेर ने देखा कि राजा इतने बड़े अतिथि की सेवा करने के लिए इतना बड़ा जोखिम उठा सकता है, ने प्राण को भी दे सकता है, तो प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उनके खजाना को भर दिए, पूरा खजाना भर गया। तो अंत में उनको कुबेर पर चढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। और अंत में कहते हैं कि कौश जितना लेना है आप ले सकते हो, 14 करोड़ क्या, 14 अरब भी ले सकते हो, लेकिन कौश जो है केवल 14 करोड़ ही स्वर्ण मुद्रा लिया। उसको छूट मिली थी, अगर हम लोगों को छूट मिले तो पूरा भर लेंगे, पैकेट इधर उधर, बीट बैग, अटैची, बल्कि 2-4 गुनी भी मांग लेंगे कि थोड़ा। लेकिन वो ज्यादा नहीं लिए, 14 करोड़ मतलब 14 करोड़, 1 रुपया भी ज्यादा नहीं लिए कि रास्ते के लिए थोड़ा हम ले लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ले लेते हैं, या कोई टैक्स देना होगा, या चुंगी पर कुछ देना होगा नहीं, केवल 14 करोड़। इतना बड़ा संतोष। तो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा लेकर अपने गुरु के चरणों में दे देता है कौश। तो पहले के जो राजा होते थे, गुरु होते थे, शिष्य होते थे, वो सेवा करते थे। राजा गुरु जो है लेना नहीं चाहता है, लेकिन शिष्य देना चाहता है। गुरु शिष्य से कुछ नहीं अपेक्षा रखता है, लेकिन शिष्य देना चाहता है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हर व्यक्ति को कुछ अपेक्षा रहती है, लेकिन सामने वाला देना नहीं चाहता है। हर व्यक्ति अपेक्षा रखता है कि हम इनसे हमको इतना मिल सकता है। चाहे माता पिता, गुरु भी अपेक्षा रखते हैं, लेकिन शिष्य देना नहीं चाहता है। शिष्य बौद्ध होगा तो व्यास पूजा में कुछ दे सकता है, वो भी देगा तो जरूरत से कम ही देता है। और कभी कभी देख करके भी शिष्य ले भी लेता है। तो पहले के जो गुरु शिष्य राजा एक आदर्श था, आज भी आदर्शमान शिष्य हैं, गुरु भी हैं और शासक भी हैं। आज भी कहीं कहीं उसके नमूने हैं, आज भी कभी कभी उसके झलक दिखाई देते हैं। तो गुरु शिष्य का संबंध या अतिथि के साथ कैसा व्यवहार हो, अम्बरीश महाराज से हम देख सकते हैं, सीख सकते हैं, या राजा रघु से हम सीख सकते हैं, भगवान श्री राम से भी हम सीख सकते हैं। भगवान श्री राम के यहाँ जो भी अतिथि आता था वो उसको संतुष्ट करके भेजते थे। युधिष्ठिर महाराज के बाद जो भी भिखारी लोग आते थे उसको इतना दे देते थे जो फिर वो भिखारी नहीं रहता था। जैसे बलि महाराज के अतिथि के रूप में वामन देव गए, तो वामन देव गए तो उनका बहुत स्वागत किए बलि महाराज, इतना स्वागत किए, मंत्र में कहे कि आपको मैं क्या दूं, ब्राह्मण को दान देना चाहिए। ब्राह्मण को खाना प्रिय होता है और दान प्रिय होता है। ब्राह्मण को अगर आप खिलाते हैं और दान देते हैं तो अगर समर्थ ब्राह्मण होता है तो बहुत कुछ आशीर्वाद देता है। आशीर्वाद देता है तो सामने वाले का कल्याण हो जाता है। जैसे बलि महाराज के सभा में जब वामन देव गए तो तेज को देख करके बलि महाराज समझ के तेजस्वी ब्राह्मण है, ऐसे ब्राह्मण को, योग्य ब्राह्मण को दान देना चाहिए। योग्य पात्र अगर आपके पास आता है तो उसको दान देने से बहुत फल मिलता है। जैसे आप दूध निकालते हैं और बाल्टी में छेद है तो दूध निकल जाता है, तो जो ब्राह्मण में अनेक छेद हैं तो उसको दान देने से वो फल नहीं प्राप्त होता है उतना पूर्ण रूप से। अगर कोई सही ब्राह्मण होता है, सही पात्र को दान देने से वो ज्यादा फलदायी होता है। नीति शास्त्र में कहा गया है कि दान देना चाहिए तो पात्र को, पात्र हो तो उसको अवश्य दान देना चाहिए, अगर अपात्र भी है तो भी देना चाहिए, लेकिन योग्य कोई आदमी होता है तो उसको मिस नहीं करना चाहिए। जैसे वृथा वृष्टि समुद्र सु वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दिवापिच वृथा दानम समर्थस्य। कोई व्यक्ति बहुत धनी है तो सब लोग धनी को देना चाहते हैं, सब लोग दोस्ती धनी से करना चाहते हैं। देना भी है तो धनी को, लोग खिलाना भी है तो जो खाकर आघाया उसी को लोग खिलाना चाहते हैं। सब लोग जो मजबूत है उसी को हेल्प करना चाहते हैं, जो हेल्प करने लायक है उसको हेल्प करना चाहिए, जो बिल्कुल खाने के बिना तड़प है उसको जरूर खिलाना चाहिए, और खिलाए जो खा करके तृप्त है उसको खिला रहे हैं, खिलाना ठीक है लेकिन वो तो खाया है, लेकिन अगर वहीं बगल में कोई नहीं खाया है मांग रहा है तो उसको भी खिलाना चाहिए। समुद्र में वर्षा व्यर्थ है, समुद्र में ऐसे ही पानी है, अगर खेती में पानी होता है तो खुशहाली होती है, फसल में वृद्धि होती है, किसान खुशहाल होते हैं, पशुओं को भी चारा मिलता है, लोगों को खाने के लिए अन्न मिलता है, पशु पक्षी भी उस पर जीवित रहते हैं। और दिन में जैसे कोई दीपक जलाता है, वृथा दीपो दिवा पीच, दिन में दीपक जलाने कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही प्रकाश है। तो अपने विवेक से लोगों को दान देना चाहिए, सेवा करना चाहिए कि कहाँ जरूरत है। जैसे कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं बाढ़ आ जाता है, तो दूसरे देश वाले भी हेल्प करते हैं, भूकंप पीड़ितों के लिए सहायता करते हैं। तो दान पात्र को और जरूरतमंद को देने से बहुत फलदायी होता है। एक बार सहदेव दास थे और हम लोग जा रहे थे, महाराज जी थे, तो कहीं भिखारियों को कुछ पैसा देना था, तो सहदेव दास बोले कि महाराज जी लोगों का बहुत पैसा होता है, ये लोग बहुत। तो महाराज बोले कि लोगों का कितना, दो चार दस फ्लैट है, कितना फ्लैट है। इन्हें बहुत पैसा होता तो फिर मांगते कि ऐसा क्यों कपड़ा पहनते, फिर ऐसा फुटपाथ पर क्यों सोते। पैसा होता होगा, किसी किसी के पास पैसा होता है। तो कोई बोलता है कि, तो मैंने कहा कि गरीबों को दान देने से ये लोग गांजा भांग पी जाते हैं, शराब पी जाते हैं। तो बोले सब लोग नहीं पीते हैं, कुछ लोग पी जाते हैं, कुछ लोगों को पैसा दीजिए तो गांजा पी जाते हैं। इसका मतलब सब लोग नहीं पीते हैं, कुछ लोग जैसे रोटी देते हैं। श्रीधर महाराज जब जाते थे तो रोटी लेकर जाते थे और प्रसाद लेकर जाते थे, तो जो भी बच्चे आते थे गरीब मांगने के लिए, तो उन लोगों को रोटी और पेड़ा देते थे। कुछ लोग कभी कभी भक्त लोग पैसा भी देते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं पैसा देने से उसका वो दुरुपयोग कर सकते हैं। तो महाराज बता रहे थे कि पैसा का वो दुरुपयोग करे चाहे सदुपयोग करे, वो अपना विषय नहीं है, उसको अगर देना है तो दे सकते हैं आप, ऐसा कुछ एक दो रुपया देने से ऐसा कुछ नहीं। एक दो रुपया कहाँ शराब मिलता है, तो शराब लोग बोलते हैं शराब अगर पी गए तो फिर आपके ऊपर भी कर्म बंधन लगता है। लेकिन अपना पहला कर्तव्य है देना, पहले देना है, विचार नहीं करना है। जैसे किसी को भूख लगी है भोजन कराना है, अब बोले नहीं भोजन कराएंगे इसको अनपच हो जाएगा, तब भोजन कराएंगे इसको उल्टी हो जाएगी तो हमारे ऊपर सू कर देगा, कंप्लेन कर देगा, या भोजन कराएंगे तो कुछ भी हो सकता है तो बाद में हम फंस जाएंगे। ऐसा जब विचार करेंगे तो आगे गाड़ी नहीं बढ़ेगी। गाड़ी आप चला रहे हैं, चलाने से पहले आप विचार करेंगे कि एक्सीडेंट हो जाएगी, कहीं हाईवे पर ट्रक से टक्कर हो जाएगी, या टायर पंचर हो जाएगा, ये हो जाता, आप गाड़ी नहीं चला सकते। कुछ जोखिम उठाना ही पड़ता है अच्छा काम के लिए। रोज एक्सीडेंट होता है, रोज गाड़ी से टक्कर होता है, लेकिन फिर भी लोग चलाने वाले चलाते हैं। लेकिन सब कुछ आप हिसाब गणित पहले मैथमेटिक्स लगाएंगे कि नहीं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते। हर जगह कुछ अनिष्ट भी होता है, कुछ शुभ भी होता है। हर कार्य में दोष अदोष रहता है, हर कार्य में शुभाशुभ होता है। ऐसा नहीं कि 100% सही ही होगा, नहीं, कुछ उसमें दोष भी होता है। आप प्रवचन करते हैं उसमें कुछ बहुत सारी अशुद्धियां भी होती हैं, बहुत कुछ अप्रासंगिक चीज भी आते हैं, तो होता है। संसार में कोई भी चीज संपूर्ण रूप से सही नहीं है, शुद्ध नहीं है। कोई भी वस्तु सर्वगुण संपन्न नहीं है, इसलिए आदमी हर कार्य करके भगवान के ऊपर छोड़ देता है। त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पय, तो भगवान उसको शुद्ध कर देते हैं। जो भी हम कार्य करते हैं भगवान के ऊपर को छोड़ते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचित्। हम दान भी देते हैं तो भगवान को पहले त्वदीयं वस्तु गोविंदम शुभमेव समर्पयति, कृष्णार्पण करते हैं। पुरोहित को भी दान देता है तो पहले कृष्णार्पण करके दे देते हैं। तो बोलते हैं कृष्णार्पण करिए, तो कृष्णार्पण होता है तो कौन पुरोहित ही लेते हैं, वो ब्राह्मण लेते हैं। तो भगवान को पहले अर्पण कर दिया तो उसमें दोष नहीं लगता है। तो यहाँ पर अम्बरीश महाराज वहां पर हमें फंस गए थे, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये गीता प्रेस में किताब निकलती, क्या करना है क्या नहीं करना है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, उसने बहुत कुछ दिया है, व्यवहारिक चीज दिया है। तो व्यवहारिक ज्ञान यहाँ पर काम आया है अम्बरीश महाराज को। कभी कभी मान लीजिए आपके घर में कोई आ गया, आप सब कुछ खा करके सो रहे हैं, सब लोग सो गए और खाना भी खा लिए, कोई आ गया और उसको बहुत जोर से भूख लगी है। कभी कभी मान लीजिए कोई बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति आ गया, आपके कुल गुरु, आपके गुरु जी आ गए, या कोई बहुत वरिष्ठ व्यक्ति आ गया, तो खाया हुआ चीज बचा हुआ है मान लीजिए, तो आप क्या कहेंगे कि ये कैसे खिलाएं, हम लोग सब खा लिए हैं कुछ बचा है, तो आपका दिल नहीं करेगा कि खिलाऊं। रात्रि हो गई है, सब सो भी गए हैं, तो वहां आदमी व्यवहारिक ज्ञान का प्रयोग करता है, तो पूछता है कि मैं आपके लिए क्या बना सकता हूं, अगर बनाना तो हम बना भी सकते हैं, नहीं तो दूध है फल है और हम लोग खा चुके हैं, जो कुछ बचा है वो तो आपको खिलाना उचित भी नहीं है, वो तो उच्छिष्ट है, बचा हुआ चीज तो ठीक नहीं है। तो आदमी अपने मन की बात को सामने प्रस्तुत करता है, तो उसमें वरिष्ठ व्यक्ति रास्ता निकालता है, बोलता है कि नहीं जो बचा है वो दे दीजिए, प्रसाद कभी जूठा नहीं होता है, प्रसाद जो भगवान को भोग लग जाता है उसमें सब लोग खा भी लें फिर भी वो प्रसाद ही रहता है, वो उच्छिष्ट नहीं होता है, प्रसाद हमेशा प्रसाद रहता है, उसमें किसी को भी खिला सकते हैं, गुरु भी आ गए उनको भी खिला सकते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण आ गए द्रौपदी के यहाँ, भगवान श्री कृष्ण आए और द्रौपदी सब लोग खा ले, अतिथि के रूप में भगवान आ गए थे अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होता है। तो महाराज बोलते हैं कि आजकल अतिथि होते हैं देव भव। महाराज एक बार लेक्चर में बता रहे थे जुहू में कि अतिथि साला लोग बनाते हैं, गेस्ट हाउस मतलब क्या है, अतिथियों के रहने के लिए, तो लोग अतिथि के रहने के लिए जो गेस्ट हाउस बनाते हैं होटल बनाते हैं, तो इसलिए कि कोई अतिथि आएगा तो कुछ दे कर जाएगा, कुछ तो अतिथि आएंगे तो रुकेंगे तो 2000 का रूम है, खाने का 200 रुपए है तो कुछ जरूर दे कर जाएंगे। अतिथि देव भव नहीं, अब देव भव माने कुछ दे करके ही जाएंगे, महाराज व्याख्या कर रहे थे। अतिथि अब देव भव हो गए, अतिथि आते हैं तो अंश से ज्यादा लोग आगे सोचते हैं हाँ इतना इनकम हमारा हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के अतिथि बनकर आए, उसके पहले दुर्वासा जी ही वहाँ पधारे थे, यहाँ भी दुर्वासा जी आए हैं, वहाँ भी द्रौपदी के यहाँ दुर्वासा जी आए थे, यहाँ भी स्नान करने गए वहाँ भी स्नान करने गए थे, अपने पूरी मंडली के साथ आए थे, और उसी बीच में एक और अतिथि भगवान आ जाते हैं और बोलते हैं मुझे बहुत भूख लगी है खिलाओ, जैसे गुरु आपके घर में आ जाए आप खा लिए हैं थोड़ा बचा हुआ है, तो भगवान कहते हैं मुझे खिलाओ जो कुछ भी तुम्हारे घर में बना था पहले से, जो बचा है वही खिलाओ। तो द्रौपदी तो खा चुकी थी और अक्षय पात्र को मिट्टी से मटिया भी दी थी, तो भगवान बोले देखो उसमें कुछ तो होगा, एक साग का एक पत्ता जो है वही भगवान खा करके तृप्त हो गए। तो जो खाया हुआ चीज भी खिला सकते हैं, प्रसाद एक भक्त बताया तो प्रसाद मतलब होता है, विष्णुमूर्ति पर एक बार हमसे बता रहे थे कि प्रसाद का मतलब आप जानते हैं वाला नहीं, तो बोले प्र मतलब प्रभु, सा मतलब साक्षात, आदम माने दर्शन। समय तो बहुत कुछ मतलब बहुत अच्छा आप इसका व्याख्या किए। प्रसाद में तीन अक्षर है, प्र मतलब प्रभु, सा मतलब साक्षात, द माने दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन प्रसाद है। मुझे बहुत अच्छा अर्थ लगा। तो बोले कि प्रसाद जो है किसी भी अवस्था में सब लोग खा लिए हैं तो भी वो प्रसाद ही रहता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं वो प्रसाद ही नहीं वो महाप्रसाद हो जाता है। जब सब लोग खा लेते हैं वैष्णव लोग भी, तब वो महाप्रसाद हो जाते, उसकी महिमा और बढ़ जाती है, उसकी महिमा और बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर अम्बरीश महाराज को संकोच हो रहा है कि मैं कैसे खाऊं, अगर खाता हूं तो यह अधर्म है, शास्त्र के विरुद्ध है, कोई अतिथि को बिना खिलाए खा लेना ये ठीक नहीं है। लेकिन शास्त्र में ये भी कहा गया कि प्रसाद को आप खा सकते हैं, प्रसाद आप खा करके भी बड़े बड़े अतिथियों को भी खिला, स्वयं भगवान ही खाए हैं, द्रौपदी के यहाँ खाए, भगवान विदुर के घर में खाए, ऐसे समय में गए जब सब कुछ खा पका करके लोग बर्तन को ऐसे उठा दिए थे, तो भगवान बोले जो भी है वो खिला दो। तो केला लोग लाकर रखते हैं ना, एक बार केला खरीद कर ले आए, एक हफ्ता उसमें से खाते रहते हैं, एक बार सब्जी खरीद कर ले आए, ककड़ी टमाटर उसी में से खाते रहते, उसी में से अमनिया करते हैं हम लोग डेली, तो वो भी एक तरह से जूठा भी है जूठा नहीं भी है, खाया हुआ भी है खाया हुआ नहीं भी है। तो अम्बरीश महाराज शास्त्र के आधार पर सोचे कि नहीं, अतिथि को बिना खिलाए नहीं खाना चाहिए। तब फिर वो जुक्ति निकाली कि पानी पी लेना खाना भी है नहीं खाना भी है, पानी अगर हम पी लेते हैं तो इससे व्रत का फल भी प्राप्त हो जाएगा, एकादशी का व्रत संपन्न हो जाएगा। अगर कोई निर्जला एकादशी किया है तो जल से व्रत तोड़ सकता है। अम्बरीश महाराज निर्जला एकादशी किए थे तो निर्जला अवस्था में वो व्रत के समय में जल से व्रत तोड़ सकता है। तो स्वविवेक से अपने विवेक का प्रयोग किए और जल पान किए, उसी समय दुर्वासा जी आ जाते हैं। और दुर्वासा जी बहुत कुपित हुए, वो तो अपने ध्यान से भी समझ गए कि देखो मुझे बिना एक किए जल ग्रहण कर लिया है। दुर्वासा जी ब्रह्म निराकार भक्त, ये प्रभुपाद जी पीछे श्लोक में लिखते हैं कि निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे, निराकार ब्रह्म के जोगी थे, और अम्बरीश महाराज भक्त थे। तो भक्त जो होता है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, ब्रह्मेति जोगी ब्रह्म की उपासना करते हैं, और जो भक्त होता है वो भगवान की उपासना करता है। मैंने जोगी से भक्त का स्थान बहुत ऊंचा है। अम्बरीश महाराज का पोजीशन बहुत बड़ा था लेकिन इतने नम्र थे, अपनी नम्रता का और अपनी सेवा भावना को प्रदर्शित कर रहे थे कि हमारे यहाँ अतिथि आए हैं, वो नहीं देख रहे थे कि हम इनसे बहुत श्रेष्ठ हैं, हम पी खा लेंगे तो हमारा क्या बिगड़ सकता है, नहीं, वो शास्त्र के अनुसार सब कुछ देख रहे थे और अपना पोजीशन भी ये नहीं देख रहे थे कि मैं बहुत बड़ा हूं, जबकि बहुत बड़े भक्त थे। अम्बरीश महाराज खा भी लेते तो भी कोई अपराध नहीं था, लेकिन नहीं, अम्बरीश महाराज धर्म सम्मत आचरण करते थे, शास्त्र के अनुसार आचरण करते थे हमेशा। यह शास्त्र विधि सृज्य वर्तते कामकार, जो जितना बड़ा होता है उतना ही नियम के अनुसार चलता है। जैसे सूर्यदेव हमेशा नियम में रहते हैं, कभी समय का अतिक्रमण नहीं करते हैं, बिल्कुल समय पर आते हैं और समय पर जाते हैं, कभी सूर्य कभी ट्रैफिक में नहीं उलझ जाते हैं। जैसे यहाँ का जितना भी नियम बनाइए वो छत विछत हो जाता है, ट्रेन भी चलती है तो कभी कभी 24 घंटा लेट हो जाती है, कभी आप प्रोमिस करते हैं कि हाँ मैं इस समय पर आपको मिलेगा, तो भी आदमी मिस कर जाता है। कभी आदमी बोलता है मैं इतना आपको दूंगा तो भी मिस हो जाता है। कभी आदमी बोलता है कि मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ फिर भी कलह हो जाता है। कभी व्यक्ति यह भी प्रोमिस करता है कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा मेरा साथ रहेगा, तो भी डाइवर्स हो जाता है, तो भी डाइवर्स हो जाता है। कभी आदमी एक प्लेट में खाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक सीट में भी बैठना नहीं चाहता है, या आमने सामने भी नहीं होना चाहता है। यहाँ का जो कुछ भी नियम है ये टूट जाता है, लेकिन जो महान लोग होते हैं वो अपने को तोड़ लेते हैं लेकिन नियम को नहीं तोड़ते हैं। जैसे हरिश्चंद जब प्रतिज्ञा ले लिए थे, अतिथि के लिए प्रतिज्ञा लिए थे, मैं आपको इतना दूंगा, तो विश्वामित्र को दिए, भले टूट गए लेकिन नियम को नहीं तोड़े। सूरज चले चांद चले सूरज चले तले जगत व्यवहार, पर दृढ़ हरिश्चंद के तले न सत्य विचार। चांद चले सूरज चले तले जगत व्यवहार, पर दृढ़ हरिश्चंद के, सत्यवादी हरिश्चंद का जो संकल्प था वो नहीं तोड़े। अपने आप को लोग बदल देते हैं लेकिन जो बड़े बड़े महान लोग हैं वो कभी अपने को बदलते नहीं है। भगवान भी नियम बदल देते हैं, हरि को नियम बदलते देखा, लेकिन जो महान ऐसे विभूति हैं जो अपना संकल्प नहीं बदलते हैं, अपना संकल्प नहीं तोड़ते हैं। हरिचंद अपने संकल्प पर थे, तो जो जितना ही महान होता है, जैसे सूर्य कभी विलंब नहीं किया कि आज 8 बजे सूर्योदय हुआ है, इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज सूर्यास्त 9 बजे हुआ है, या आज मध्याह्न जो है 2 बज गया है तब सूर्य जो है मध्याह्न में आया, ऐसा नहीं हुआ है। महाराज एक बार इसकी व्याख्या में बता रहे थे कि जो जितना ही महान होता है उतना ही वो टाइम टेबल हर चीज का बहुत पक्का होता है, वो अपना हर चीज। यह शास्त्र विधि उत्सर्ज्य बरतते काम कार, शास्त्र विधि को जो तोड़ता है और मनमाना कार्य करता है, तो न च सिद्धि अवाप्नोति, न सुखम न पराम गति, न इस संसार में ही उसको सुख मिलता है, न सदगति मिलती है, न परलोक में ही, न सुखम न पराम गति, न इस लोक में न परलोक में। इसलिए शास्त्र के अनुसार हमें अपने को चलाना चाहिए, शास्त्र के ऊपर चलने का प्रयास करना चाहिए, कुछ नहीं तो जितना हो सके, और 100% तो हम लोग नहीं चल सकते हैं, लेकिन जितना जरूरी है उतना हमें, जैसे प्रभुपाद जी ने नियम बनाया है, कुछ नियम बनाया है, वो नियम का अगर हम पालन करेंगे तो हमारा जीवन जो है सुखद हो सकता है, हमारा भविष्य जो है उज्ज्वल हो सकता है। तो शास्त्र के अनुसार जब व्यक्ति चलता है तो वो शास्त्रज्ञ कहलाता है, और शास्त्रज्ञ जब हो जाता है तो दूसरे लोग भी उसका अनुसरण करते हैं, और दूसरे लोग जब उसका अनुसरण करते हैं तो समाज जो है वो बहुत सुंदर हो जाता है, वो समाज का दर्पण हो जाता है, जैसे दूसरे लोग आप में देखते हैं। साहित्य समाज का दर्पण होता है, और जो साहित्य को अपने में कर लेता है तो सब लोग उसमें देखते हैं। तो प्रभुपाद जी पूरे विश्व में साहित्य के आधार पर अपना जीवन जिए और सबको एक आदर्श अपने को बनाकर दिखाए, तो सब लोग प्रभुपाद जी के अनुसार चलते हैं। महाजनो जिन गत स्वतंत्र, तो यहाँ पर इस श्लोक में ज्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं, इसलिए मैं इधर उधर का आपको दृष्टांत दे रहा हूँ। मैं ज्यादा पंडित नहीं हूँ, आप लोग यहाँ बड़े बड़े पंडित हैं, तो फिर भी मैं धृष्टता किया हूँ, बेईमानी करके आपके सामने इतना समय व्यतीत किया हूँ। तो पांडित्यपूर्ण भाषा में बोलने का भी बहुत कम लोगों को गौरव प्राप्त होता है। ऐसे बड़े बड़े विदुषी लोग, विद्वान लोग जो यहाँ बैठे हैं, लाल गोविंद जी हैं, तो मैं ज्यादा इसको खींच कर ताना बना नहीं पहना सकता हूँ। इस श्लोक का मर्म यही है कि अम्बरीश महाराज कितने महान भक्त थे, इतना महान भक्त थे फिर भी एक नवदीक्षित के स्तर पर होकर कार्य कर रहे थे, उनके लिए सब सोचने की बात नहीं थी। लेकिन अम्बरीश महाराज इतना सोच रहे थे कि हमारे यहाँ इतने महान भक्त आए हैं, इनको बिना कुछ खिलाए मैं खा लेता हूँ तो बहुत बड़ा अनिष्ट होगा। उनकी सोच ठीक थी, लेकिन दुर्वासा की सोच ठीक नहीं थी। दुर्वासा उनके भाव का सम्मान नहीं किया अम्बरीश महाराज के। दुर्वासा किस परिस्थिति में जल पिए थे इस पर दुर्वासा जी विचार नहीं किए। दुर्वासा जी को विचार अगर होता तो साप नहीं देते, अम्बरीश को मारने के लिए नहीं करते। अगर जल कोई पी लिया तो मारने की क्या जरूरत है। इस आधार पर देखा जाए तो दुर्वासा की बहुत निंदा होनी चाहिए। दुर्वासा भले जोगी हैं चाहे जो भी हैं, लेकिन अगर भक्त अम्बरीश महाराज जल पी लिए वो भी समय का ध्यान रख करके, ये कोई अपराध नहीं है। अगर अपराध भी है तो अपराध किस परिस्थिति में हुआ है, अपराध कब क्षम्य होता है। जैसे कोई विशेष परिस्थिति इमरजेंसी में कुछ नियम को तोड़ सकते हैं, वो दंडनीय नहीं होता है। जैसे कोई खाए बिना मर रहा है, अब खाए बिना उसका जीवन जो है बिल्कुल ये हो रहा है। कभी कभी लोग इतना लंबा उपवास कर जाते हैं कि वो कोमा में चले जाते हैं। एक हमारे यहाँ भक्त थे, हैं वो बांग्लादेश के हैं, तो जन्माष्टमी में निर्जला किए थे तो 8-9 बजते बजते वो बिल्कुल ये हो गए, कोमा में चले गए। वहां उस समय खा लेना अपराध नहीं, जीवन रक्षा के लिए झूठ बोल देना भी अपराध नहीं है, किसी के प्राण रक्षा के लिए भी झूठ बोल देना झूठ नहीं है। तो समय परिस्थिति के अनुसार अगर कोई मान लीजिए कोई मर रहा है और उसको कोई कह दे कि ये मछली का अगर तेल इसको पिला दिया जाए तो बच सकता है, ऐसी बहुत सी दवाइयां हैं जिसमें मछली का तेल या अंडे के आस में कुछ मिलाए रहते हैं बहुत सारी दवाइयों में, फिर भी लोग जीवन रक्षा के लिए ग्रहण करते हैं तो पाप नहीं है। लेकिन जानबूझकर सेवन करना, जैसे कफ सिरप में भी एल्कोहल रहता है तो लोग बोलते हैं कि आप एल्कोहल तो लेते ही हैं तो ऐसे लेना क्या है, लेकिन ऐसे सेवन करना वो अपराध है। जैसे बेनाड्रिल है ना, उसमें एल्कोहल का मात्रा बहुत रहता है, कोई कोई लोग शराब के जगह उसी का प्रयोग करते हैं कफ सिरप, उसमें ज्यादा नशा है, उस पीने के बाद जो है आदमी को नशा हो जाता है। एक है उसका प्रयोग करना है स्वस्थ होने के लिए, और एक प्रयोग आप कर रहे हैं उसको नशा प्रयोग के लिए। उसका प्रयोग पर निर्भर करता है हम कैसा प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ अम्बरीश महाराज जो जल पिए हैं वो शास्त्र सम्मत है, गलत नहीं है। लेकिन अम्बरीश महाराज जैसे वो भी तो बहुत ज्ञानी थे, तत्वदर्शी थे, बहुत सम्माननीय भी, लेकिन वो ऐसी क्यों घटना हुई कि उनको प्राण से ही मरना चाहते थे, जान से ही मरना चाहते। ये भगवान का विधान था, दैव जो भगवान की इच्छा थी, भगवान अपने भक्त की महिमा को बढ़ाना चाहते थे। अम्बरीश महाराज एक भक्त में कितना सम्यता, कितना दैन्यता, कितनी सहनशीलता होती है, वो भगवान एक इतिहास बनाना चाहते थे। इतिहास के माध्यम से एक भक्त का चरित्र प्रकाशित करना चाहते थे और अम्बरीश महाराज का जस बढ़ाना चाहते थे। अम्बरीश महाराज का जो जस है, उनके जस में और 4 चांद लग गया इससे, जबकि वो बिल्कुल शांत थे। उनको मारने के लिए उन्होंने बहुत राक्षसी को ही पैदा किया, लेकिन अम्बरीश महाराज बिल्कुल खड़े थे, नतमस्तक थे, वो स्वीकार कर रहे थे, उसका कोई प्रतिकार नहीं कर रहे थे। बल्कि अम्बरीश पूरे भुवन में पूरे हर जगह घूम कर आ गए, भगवान के पास भी गए। भगवान बोले कि नहीं, मैं रक्षा नहीं कर सकता हूँ, आप उन्हीं के पास जाइए। जैसे जयंत ने सीता के चरण में एक बार चोच मार कर भागा, जयंत जो इंद्र का लड़का है बहुत अहंकारी था, तो एक बार सीता जी के साथ भगवान राम ऋषिमुख पर्वत पर बैठे थे, तो जयंत जो है कौवे के शरीर में आकर के, कौवा बहुत बदमाश होता है, कौवा पक्षियों में सबसे ये होता है, बदमाश होता है, तो कौवा का शरीर धारण करके आया और सीता के चरण में चोच मारकर, सीता चरण में चोच हती भागा। तो भगवान राम समझ गए कि इंद्र का लड़का इतना बड़ा दुस्साहस कर रहा है, तो भगवान श्री राम उसको एक तिनका निकाले और उसको धनुष बाण के रूप में ये किए, और वही तिनका उसको पीछा किया, जयंत को पीछा किया, उससे जलने लगा वो। भगवान तो कुछ भी किसी चीज से मार सकते हैं, संकल्प से भी मार सकते हैं। एक तिनका लेकर के ऐसे उसके पीछे चला दिए ब्रह्मास्त्र की तरह, भागने लग। अभी समय हो गया ना, क्या है इस समय, है कब बजे समय, 9:30। अच्छा ठीक है, तो जब भागने लगा सबके पास गया, मात मृत्यु पितामन समाना, माता पिता के पास कोई नहीं बोला कि रहो। जो भगवान से ईर्ष्या करता है या भगवान के महान भक्त से ईर्ष्या द्वेष करता है, तो माता मृत्यु के समान और पिता यमराज के समान हो जाते हैं। मात मृत्यु पितामन समाना, बैठने के लिए भी नहीं कहे कि तुम बैठो, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, मैं आपके बदले में उनसे निवेदन करूंगा, नहीं। शिव जी के पास गया, शिव जी भी नहीं बोले, बोले नहीं तुम भगवान राम के द्रोही हो, तो मैं तुम्हें बैठने के लिए तुम नहीं बचा सकता हूँ। सबके पास गया, पूरा नारद देखा विकल जयंत, लाग दया कोमल चित संता, चारों तरफ विकल होकर के भाग रहा था, कोई बचा नहीं रहा था। तो नारद जी को दया आ गई, बहुत दयालु है। नारद देखा विकल जयंता, देखे कि जयंत बहुत विकल है, बहुत व्याकुल है, तो उनको दया आ गई, बोले ठीक है, देखो एक काम करो, जाओ भगवान के शरण में गिर जाओ, त्राही माम करके गिर जाओ। भगवान के शरण में कोई चला जाता है तो भगवान शरणागत की रक्षा कर लेते हैं, जाओ उनके पास, वही तुम्हें बचा सकते हैं, वही तुम्हें अभय दान दे सकते हैं। तो जयंत गया भगवान के पास, फिर अपना गलती स्वीकार किया। तो अम्बरीश महाराज से ईर्ष्या करने के चलते दुर्वासा जी हर जगह चले गए, भगवान के पास भी गए, वैकुंठ में भी गए, वैकुंठ तक भी चले गए। वैकुंठ में जाने के बाद लोग आते नहीं है, लेकिन वहां से भी उनको वापस आना पड़ा, वैकुंठ से भी उनको कुंठ में आना पड़ा। वहां भी जल रहे थे, तो अंत में अम्बरीश के पास गए और क्षमा याचना किए। फिर भी अम्बरीश महाराज ये नहीं कहे कि देखो समझ गया मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, अपने आप को आप क्या समझता था। अम्बरीश महाराज कुछ भी कर सक बोल सकते थे, बोल सकते थे कि तुम बड़ा जोगी बनते हो, तुम मेरे विषय में नहीं सोचते हो, लेकिन कुछ नहीं, बहुत धन्यता से बोले, आपको बहुत कष्ट हुआ, और प्रार्थना किए सुदर्शन चक्र से, अगर आप हमारी सेवा से भगवान प्रसन्न होंगे तो आप शांत तो हो जाएंगे, अगर चाहते तो बोलते नहीं और जला दो, आज कल हम लोगों का होगा तो और इसको थोड़ा सा नचा दो और इसको थोड़ा कर। लेकिन वास्तव में भक्त अम्बरीश महाराज इतने बड़े भक्त थे, इतना धन्य थे, इतना नम्र थे, अपने आप को समझते ही नहीं थे कि मैं भक्त हूँ, वो मानते ही नहीं थे कि मैं इतना बड़ा भक्त हूँ। तो उन्होंने बहुत बल्कि क्षमा मांगे, अम्बरीश महाराज क्षमा मांगने लगे। तो अम्बरीश महाराज का जो चरित्र है वास्तव में बहुत सुंदर है, जितना मैं तो बता नहीं सकता हूँ उनके विषय में, इतना बहुत सुंदर सुंदर उनका इतिहास है, बहुत कुछ बातें हैं जो हम नहीं बोल पाए हैं। तो ऐसे चरित्र में हम लोग को अपना चरित्र जो है सुधारना चाहिए। एक चरित्र क्यों रखा गया है कि इससे हम अपना जो चारित्रिक जो गड़बड़ी है हम उस संशोधन कर सकते हैं। हम लोग कुछ जरूर इसे अच्छाई लेकर के अपने चरित्र में मान सकते हैं। जैसे कहीं कुछ अच्छाई दिखाई देता है तो लोग उसको खरीद लेते हैं। जैसे कहीं सुंदर अंगूठी दिखाई देता है, कहीं सुंदर फूल दिखाई देता है तो लोग ले लेते हैं। तो जहां इनके चरित्र में क्या अच्छाई है हम इसको ग्रहण कर सकते हैं। अम्बरीश महाराज के व्याख्यान से यहाँ क्या दिखाया गया है कि भक्त का कैसा चरित्र होता है। भक्त सबके प्रति दयालु होता है, सबके प्रति आदर का भाव रखता है, अपने से सबको बड़ा मानता है और अपने को सबसे सूक्ष्म मानता है। भक्त का सबसे बड़ा ही गुण है। लेकिन हम लोग तो सोचते हैं हम सबसे बड़े भक्त हैं। हमारे अंदर भी ये होता है, हमारा ही जय घोष हो, लेकिन वास्तव में भक्ति में विघटन हो जाता है। हम लोग के अंदर कई कई इतना अहंकार हो जाता है तो ये पढ़कर हम हम्बुल हो सकते हैं, नम्र हो सकते हैं। अगर ये हम लोग पढ़ेंगे सुनेंगे तो हम भी हमारे अंदर भी नम्रता आएगी, हमारे अंदर भी दैन्यता आएगी, हमारे अंदर भी जो दोष आता है उस दोष को हम सुधार सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। हमारे अंदर जबकि ज्यादा दोष है, आप लोगों में नहीं है, हमारे लिए ज्यादा उपयुक्त है। आप लोग तो आप लोगों में ज्यादा नहीं, जो जितना बड़ा होता है उसमें उतने बड़े बड़े दोष भी आते हैं। जो भक्ति में आगे बढ़ता है तो पीछे से दोष भी आना चालू होता है। जब वृक्ष बढ़ता है तो उसको दूसरे लोग काटना भी चाहते हैं। कोई वृक्ष बहुत अच्छा बड़ा हो गया, बहुत सुंदर है, तो उसको काटने के लिए भी लोग प्लानिंग करते हैं। तो कोई भक्ति में प्रगति करता है तो उसमें अनेक बाधाएं भी आती हैं। जैसे राधा विनोद बाबा लिखे ना, भक्ति क्रम विकास की बाधाएं, एक किताब लिखे हैं विनोद बिहारी बाबा, भक्ति क्रम विकास की बाधाएं। भक्ति में जो क्रमिक विकास होता है उसमें हरास के भी अनेक अवय आजू बाजू में रहते हैं। उसमें आजू बाजू में दोनों चीज चलता है, कौन कब की हावी होगा उसका अनुभव नहीं होता है हम लोगों को। और विकास भी होता है लेकिन हरास करने वाले भी तत्व रहते हैं आजू बाजू में। तो भक्ति क्रम विकास की जो बाधाएं हैं वो भी उतनी ही तेजी से हावी होती हैं। तो दोनों को एक करके जो चतुर साधक होता है दोनों को तालमेल करके चलता है। तो तालमेल करके जब चलता है तो समझता है, उससे सावधान रहता है, और सावधान रहता है तो दुर्घटना से बच जाता है। जैसे असावधान होता है तो लोग बोलते हैं ना कैसे कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अगर सावधान रहेंगे तो दुर्घटना से बच सकते हैं। दुर्घटना कभी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, कोई बहुत बड़ा भी भक्त होगा उसकी भी दुर्घटना हो सकती है। दुर्घटना मतलब नहीं कि केवल कार से दुर्घटना हो गया। हम जो भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं तो भक्ति पर चलना वैसे ही है जैसे खजूर पर कभी कभी ताड़ पर लोग चलते हैं ना, तो बड़ा नया आदमी चढ़ता है तो गिरने का डर रहता है। कोई अभ्यास किया है जैसे नारियल के ऊपर चढ़ने वाला, जिसको अभ्यास है तुरंत चढ़ जाता है, तुरंत उतर जाता है। लेकिन हम लोग चढ़ेंगे तो घंटों लग सकता है और गिर भी सकते हैं। तो भक्ति में भी वैसे ही है, भक्ति सहज भी है, सब सुख की खान भी है, लेकिन जब हम सही ढंग से नहीं उसको समझ पाए हैं, अभ्यास नहीं किए हैं तो वो गिरने का भी डर रहता है। तो लोग बोलते हैं कि भक्ति करना कठिन है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो फल रसना चखे, गिरे तो चकना चूर। जैसे खजूर में फल बहुत ऊपर लगता है, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। बड़ा खजूर बहुत बड़ा होता है, लेकिन बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, वो छाया भी नहीं देता है, उसके नीचे भी छाया नहीं होता है, खजूर के यहाँ छाया कम होता है, उसके पैर के नीचे खुद गर्मी होता है, धूप होता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, आ पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, राहगीर को भी अगर धूप में छाया की जरूरत हो तो छाया भी नहीं दे सकता है, और फल भी खाना हो तो बहुत दूर है, फल भी आसानी से नहीं ले सकता है, बहुत दूर है, फल लागे अति दूर। तो खजूर में चढ़ना जैसे कठिन है वैसे भक्ति भी कठिन है। अगर हम तालमेल बैठा करके उसको समझ करके गुरु साधु शास्त्र के अनुसार अगर नहीं चलेंगे, थोड़ा भी अहंकार होगा, थोड़ा भी विचलित होंगे तो गिर जाएंगे। हम कभी भी गिर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा भी ये होता है ना मन में ये, तो हम गिर सकते हैं। हम हर रोज गिरते हैं और हर रोज उठते हैं, हम गिर गिर कर भी उठने का प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं कि हम गिर ही रहे हैं या हम गिरे हुए ही हैं, हम उठने का प्रयास कर रहे हैं। उठने के बाद भी कभी कभी आदमी गिर जाता है, कभी कभी बहुत तेज दौड़ने वाले लोग भी गिर जाते हैं, या कभी कभी कम दौड़ने वाला आदमी भी दौड़ में आगे निकल जाता है। जैसे एक हम कहानी पढ़े थे कुर्म सचकयो कथा, कछुए और खरगोश की कहानी, दोनों में बाजी लगी थी कि कौन अपने गंतव्य में आगे जाता है। तो खरगोश को बहुत तेज था कि हम तो बहुत तीव्र धावक हैं, बहुत जल्दी हम पहुंच जाएंगे, इतना क्या अभी ये करना, थोड़ा आराम करते हैं। जैसे कोई होता है कि मैं तो बहुत भक्ति में उन्नत हूँ, मुझे क्या जरूरत है इतना हाई घाई करने का। तो कछुआ बेचारा तो सोचता कि मैं तो बहुत धीरे धीरे चलता हूँ, अपना चलते रहा। लेकिन खरगोश जो है बोला अभी आराम कर लेते हैं, तो हमारे लिए तो 5 मिनट का खेल है, हमारे लिए तो दाएं बाएं हाथ का खेल है, वो क्या हमारे साथ कंपटीशन कर सकता है। तो इसी में वो सो गया, जो लोग बोलते हैं जो सो गया वो खो गया, जो सोता है कैसे लोग बोलते हैं, हाँ हम लोग प्रभात फेरी में बोलते थे 26 जनवरी और गणतंत्र दिवस, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो अब रन कहाँ तो सोवत है, अब रात्रि कहाँ भोर हो गई, रात्रि अब जग जाओ। तो वो बेचारा सो गया तो सोए रह गया, और कछुआ जो है अपने गंतव्य जहाँ था वहाँ पहुँच गया, क्योंकि अपने कार्य में लगा रहा, अनवरत लगा रहा, इसलिए पहुँच गया वो। तो हमें अपने गंतव्य पर हमेशा लगे रहना चाहिए, धीरे धीरे ही चलते रहना, लेकिन चलते रहना चाहिए, चलते रहेंगे तो हम अपने डेस्टिनेशन में पहुँच जाएंगे। हरे कृष्ण, बहुत धन्यवाद। ठीक है, कोई प्रश्न है? प्रश्न का समय भी नहीं है, अब समय भी नहीं है ना, विलम्ब हो गया इसलिए प्रश्न नहीं हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे कहने में जो भी गलती हुई होगी आप लोग क्षमा करेंगे, मैं कोई ऐसा बड़ा विद्वान और भक्त नहीं हूँ, आपके से छोटा ही एक साधक हूँ, साधना के ये प्रयास कर रहा हूँ। तो हमारे बोलने में जो भी गलती हुई होगी आप उसको सुधार लेंगे।
हरे कृष्ण।